ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंध 8 अध्याय 9 श्लोक संख्या 24। देवलिंगा प्रतिच्छन्ना स्वर्भानुदेव संसदि प्रविष्ट सोम विवक्त चंद्र काम्यभां चासुचितः। शब्द देवलिंग प्रतिष्ठन्ना, देवता के वस्त्र से अपने को आच्छादित करके स्वर्भानु राहु ने देव संसदि देवताओं के समूह में प्रविष्ट घुस करके सोमम अमृत आपिबता पी लिया। चंद्र अकारभ्याम चंद्रमा तथा सूर्य दोनों के द्वारा च तथा सूचितः बतलाए जाने पर। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने देव अपने आप को देवता के वस्त्र से आच्छादित करके देवताओं की सभा में प्रविष्ट हो गया और किसी के द्वारा यहां तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से स्थायी शत्रुता के कारण स्थिति को भांप गए। इस तरह राहु पहचान लिया गया। तात्पर्य श्री प्रभुपाद बताते हैं, मोहिनी मूर्ति रूप भगवान सारे असुरों को मोहित करने में सफल हो गए, किंतु राहु इतना चतुर था कि वह मोहित नहीं हुआ। वह समझ गया कि मोहिनी मूर्ति असुरों को ठग रही है, अतएव उसने अपने वस्त्र बदल लिए, उसने देवताओं का वेश बना लिया और देवताओं की सभा में जाकर बैठ गया। यहां पर वह यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर राहु को भगवान क्यों नहीं पहचान पाए। कारण यह था कि भगवान अमृत पीने का मजा चखना चाहते थे। भगवान चाहते थे कि वो अमृत पी ले। यह अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सदैव सतर्क रहते थे, अतएव जब राहु देवताओं की सभा में प्रविष्ट हुआ तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और तब भगवान भी उससे सतर्क हो गए। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभुं कदामयं नराति सपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सहजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगन ललिता श्री विशाखानुतंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसृते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो अध्याय का नाम है मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। तो ये प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है और हम लोग इसके बारे में कई बार कथाओं में सुन चुके हैं। अगर किसी ने कथा नहीं भी सुनी मोहिनी मूर्ति की समुद्र मंथन की, तो भी कहीं ना कहीं उस हर जीव का इस संसार में कनेक्शन है इस कथा से। किस रूप में? क्योंकि इस कथा के अनुसार जो राहु और केतु हैं वो सबके ऊपर मंडरा रहे हैं है कि नहीं? उसके ये जो नक्षत्र हैं नवग्रह, उनमें से दो ये दिखाई नहीं देते, अदृश्य रूप में रहते हैं, तो इनकी कृपा सबके ऊपर बनी रहती है कि नहीं? और जिसके ऊपर जब ज्यादा आ जाती है कृपा, जो ज्यादा इनसे ग्रसित हो जाते हैं, तो फिर जब हाथ दिखाने जाते हैं है ना, तो पता चलता है ओहो राहु की दशा जो है भारी चल रही है। तो उसको पता चलता है राहु, कहते जी राहु कौन है ये? फिर वहां से कहानी शुरू होती है। ये एक लंबे समय की बात है। एक बार जो है समुद्र मंथन हुआ और उसमें देवता लोग और असुर लोग आमने सामने थे। समुद्र को मंथन था और उसमें से नाना प्रकार की चीजें निकलनी थी और सब असुर चाहते थे कि वो हमें मिल जाए, देवता चाहते थे हमें मिल जाए। तो भगवान के कहने पर उन सबको क्या हुआ, कंप्रोमाइज हो गया कि ठीक है हमारा उद्देश्य तो एक है ना, चलो पहले उस उद्देश्य तक की प्राप्ति करते हैं, उसके बाद लड़ लेंगे बाद में। जीवन भर पड़ा लड़ने के लिए है ना। हम देख सकते हैं समाज में भी ऐसा होता है, अगर किसी व्यक्ति का दुश्मन एक है तो चाहे वो आपस में कितने लड़ते बढ़ते हो, लेकिन जब तक दुश्मन एक है उसको हराने की बात है तब वो एक हो जाते हैं, है कि नहीं? जैसे कई बार देखा जाता है, आप समाज में जानते हैं इस प्रकार के, है ना। अब हम पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं, तो कोई पार्टीज में भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक पार्टी को गाली देता था जीवन भर, जब पता चलता है उसका उस जिस पार्टी में वो है उसमें उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, तो कई बार वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है जिसको बचपन से गाली दे रहा था, और फिर वो दोनों मिलकर फिर उसको गाली देते हैं, है ना। तो फिर जब पता चलता है जो पहली पार्टी वाला था दूसरी पार्टी वाला, उसको लगता है नहीं अभी बातचीत चल रही है मेरी कि इनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, तो फिर वापस उसी पार्टी में आ जाता है और फिर बल्कि उसको फिर गाली देता है, कहता है मैं तो ऐसे ही आया था, ये तो हमारा फैमिली बिजनेस है, इधर से इधर जाना इधर से इधर जाना। तो यहां देखते हैं देवताओं को और असुरों को इसमें दोस्ती होगी, बताइए कॉम्प्रोमाइज हो गया, किसने की समुद्र मंथन करेंगे उसमें जो बहुत सारी चीजें निकलेंगी आपस में बांट लेंगे, तो उद्देश्य एक था। ऐसे ही हमारे जीवन में जब घरों में झगड़े होते हैं समस्याएं होती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, अहम, मेरा अहंकार, मेरा लाभ, और वहां से लड़ाई शुरू होती है कि नहीं। और अगर कृष्ण भावनामृत में जो भक्त हैं गृहस्थ लोग, धीरे धीरे उनके झगड़े खत्म हो जाते हैं, कारण अब उनका लक्ष्य एक रहता है, ना अपनी संतुष्टि ना आपकी संतुष्टि, किसकी संतुष्टि, भगवान की संतुष्टि। तो चाहे वो लोग कितने लड़ते हों कितने झगड़ते हों, कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही उनको बचा सकता है। जब वो उनके बीच में एक ऐसा सेंस ऑब्जेक्ट रख देता है, एक ऐसा गोल रख देता है कि अल्टीमेटली हमको भगवान को प्रसन्न करना है, तब जाके उनके घर में सुख और शांति आनी शुरू हो जाती है। तब उनको लगता है कि हम लोग तो दोनों भगवान के दास हैं, तो झगड़ा किस लिए करें, है ना। तो उसी तरह जब कुछ अलग चीज आ जाती, तो यहां पर था लाभ मिलना था, तो इनका लाभ मिलने के लिए भगवान ने ही हर तरह के अवतार लिए, कश्यप के रूप में भी आए, है ना, और पर्वत को रखा, और फिर वो जो मंथनी मंथनी बनाई, है ना, और फिर वासुकी को लाए इसको मंथन करने के लिए। समुद्र कितना बड़ा है और उसके लिए बहुत बड़ी चीज चाहिए ना मथने के लिए। तो फिर क्या हुआ, नाना प्रकार की चीजें निकली। अब उसके अंदर से अमृत भी निकला है, और हमारे लिए अमृत क्या है, श्री राधा राधे करमन भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज। तो अब जो है अमृत बाहर निकला है, अब अमृत लग गया हाथ, अब असुरों ने छीन लिया कि हमें चाहिए अग्नि, क्योंकि इसको मिलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अमृत को प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद तो हम देवताओं को, जैसे आजकल रोज झगड़े होते थे उनके, आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था, तो कई देवता लोग मूर्छित हो जाते थे, कई मर जाते थे, कई असुर के हाथ पांव कट जाते थे, लेकिन असुर जो है ये ज्यादा बलशाली और शक्तिशाली हो जाते थे, ज्यादा तपस्या करते थे, इनको भी मालूम था किसकी भक्ति करनी है, किसकी तपस्या करनी है, किसी भी अच्छे देवता को प्रसन्न करके कुछ भी वरदान ले लेते थे। और इधर क्योंकि इंद्र ने अपने गुरु के प्रति क्या कर दिया था, अपराध कर दिया था, इसलिए उनका सारा तेज समाप्त होना ही होना था, और इसलिए उनको हार मिल रही थी, लेकिन वो फिर से अच्छी पोजीशन देने के चक्कर में ये समुद्र मंथन हुआ और फिर उसमें से अमृत निकला। अब अमृत निकला और अमृत कौन नहीं लेना चाहेगा, है कि नहीं, हम सब भी यहीं तो बैठे अमृत के लिए, है ना। मृत्यु में अमृत गमयो, वैदिक वाक्य है कि जो लोग बार बार मर रहे हैं उनको चाहिए किस ओर दृष्टि करें, अमृत अमृत को प्राप्त करें, ये वैदिक वाक्य है। अभी एक बहुत बड़ी कन्फेडरेशन था एजुकेशन के ऊपर, जिसमें मुझे भी बुलाया था, पूरे भारत से जो बेस्ट टीचर थे, बेस्ट स्कॉलर थे, बेस्ट डीन थे, बेस्ट प्रोफेसर थे, उनको अवार्ड दिया जाता है उस सेरेमनी में। उस सेरेमनी में लोग कई स्पीकर्स भी आते हैं, तो बड़े बड़े स्कॉलरली पीपल थे वहां पर, जो कुछ ना कुछ स्पीच देनी थी, उनका था वैदिक एजुकेशन से इसको कनेक्ट करें। तो हमारे दिल्ली के डिप्टी सीएम भी थे मनीष सिसोदिया जी, तो हम लोगों को जो है बात का टाइम दिया गया था सबसे आखिरी का। तो जब सबने बोल लिया, लंच हुआ, लंच के बाद मेरा बात, मेरी बारी थी। अब मेरे लेक्चर के बीच में ही सिसोदिया जी कभी भी पहुंच सकते थे, मेरे को 15 मिनट बोलने को बोला था, बट बाद में बोला कि शायद लेट हो सकते थे, आप आधा घंटा बोलेगा। नहीं का बोलने के लिए तो हम लोग एक बार आ जाए स्टेज पे तो लोग उतारते हैं हम लोगों को, सर बाजा ही नीचे प्लीज। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने फिर आधा घंटा पौना घंटा वैदिक एजुकेशन की इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न एज इस पर लेक्चर दिया, और वो समस्याएं सब बताए कि आजकल इस मॉडर्न एजुकेशन के आधार पर क्या चल रहा है संसार, क्या लोग चाहते हैं, क्या चाहिए उनको, और वो सब पूरा करने के चक्कर में जितने क्राइम हो रहे हैं, जितने रेप हो रहे हैं, जितने क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, और जितनी समस्याएं बढ़ रही हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे को मालूम नहीं कि जीना कैसे, स्टडी का मटेरियल क्या होना चाहिए। तो उन सब टीचर्स को मैंने बोला कि आप सब टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, अभी आपको अवार्ड भी मिलेगा, तो कंप्लीट होगी आपकी एजुकेशन, या अभी सीखते हो कुछ? कहते सर अभी भी सीख रहे। मैंने कहा कितने लोगों को लगता है कि आज भी सीख रहे हो आप, चाहे विषय का प्रोफेसर हैं, चाहे आप डीन हैं, चाहे कुछ भी, तुमको लगा सर हम अभी भी सीख रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ, तो फिर सीखो अभी, और सीखना है अभी, है ना। तो क्या सीखना है, क्या बताया उनको कि सारा का सारा सोल्यूशन दे दिया 20-25 मिनट में, आधे घंटे में सारा सोल्यूशन दे दिया। वैदिक एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, आज का एजुकेशन हमें कहां लेकर जा रहा है, जब तक वैदिक एजुकेशन का बेस आधार नहीं बनेगा तब तक हमारा मटेरियल लाइफ खराब है। तो शुरुआत किया तमसो मा ज्योतिर्गमय, पहले बोला क्या मृत्यु मां अमृत अमृत गमय, क्योंकि मृत्यु से अमृत को प्राप्त करो। अब समस्या क्या थी कि मेरे लेक्चर के बाद पहुंचे हमारे डिप्टी सीएम साहब, और उन्होंने वहां पर जो अपना आधे घंटे का स्पीच दिया उसमें भी उन्होंने ये सब समस्या रखी कि समाज में हो क्या रहा है, ये शिक्षा किस लिए, सब लोग बोल तो रहे कि शिक्षा कैसी हो, कोई ये नहीं बोल रहा कि शिक्षक क्यों हो। तो आधा घंटा सारी परेशानी समस्याएं जो मैंने बोली वो सारी समस्याएं उसने बताई, कम्युनल वार्स उसने बताया, उन्होंने बताया सब कुछ बताया, और बोला कि मेरे को आज तक आंसर नहीं मिला कि शिक्षा क्यों। और मैं बैठे बैठे परेशान हो रहा था, मैं कहा सर आधा घंटा पहले आए थे तो शायद दिल्ली की शिक्षा ही बदल जाती आज, इधर शिक्षा मिनिस्टर ऑल्सो ना, एजुकेशन मिनिस्टर ऑल्सो। तो मैं बड़ा परेशान था, मैंने कहा बताओ ये ना पूरी रामायण खत्म हो गई, अब ये पूछ रहे हैं सीता कौन थी, तो मतलब पूरा खत्म हो चुका था। तो मैंने क्या करा, मेरे पास जो मेरे पेपर थे स्लाइड शो के, वो मैंने उनको पकड़ा दिए। मैं जब मेरे साथ बैठे तो मैंने कहा सर ये आपके सारे आंसर इसमें है, आपने बोल तो दिए सबको, मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं, आप क्वेश्चन बाद में रेस कर रहे हो। तो मैंने क्या बताया कि अभी उन्होंने पूछा शिक्षा क्यों, वास्तविक किस लिए देनी है शिक्षा, तो क्या था शिक्षा का बेस, हमने बताया मृत्यु मां अमृतगमयो, हम लोग बार बार मर रहे हैं, एक तो हर क्षण मर रहे हैं, जो समय चला गया मर गया, आपका बचपन गया, आपकी जवानी गई, कहीं की जवानी है, कहीं कोई बुढ़ापा आ गया तो उनकी जवानी गई तो वो चला गया, तो मृत्यु हमारी हर क्षण हो रही है, और एक दिन ये शरीर भी चला जाता है कि नहीं। और जब शरीर चला जाता है, अब ये तो मानते कि हाँ शरीर चला जाता है, लेकिन पुनर्जन्म पर विश्वास क्यों नहीं करते, ये भी तो उसी में लिखा है। और 84 लाख प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है, तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इसलिए मिला है ताकि क्या कर सके, मृत्यु मां अमृतगमयो, अर्थात बार बार मरने और जीने के चक्कर से बाहर निकलकर अमृत को प्राप्त करें, जिसके लिए असुर भी परेशान हो रहे हैं। असुरों के पास भी लंबी उम्र तो है, लेकिन मृत्यु का डर है, मृत्यु जो है सबको अमरे जरूर गले जरूर लगा दिया, आ गले लग जा, सबको लगाती है, और हर व्यक्ति से भागना चाहता है, बचना चाहता है, लेकिन हमारी शिक्षा इसका सोल्यूशन नहीं देती। बताइए किसी स्कूल में बताया क्या कि मृत्यु का सोल्यूशन क्या है? कुछ साइंटिस्ट सुबह से लेकर शाम तक लेबोरेटरीज में कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करते रहते हैं कि क्या हो जाए, हम अमर हो जाए। कई सालों से कर रहे हैं, कई सालों से जितने साइंटिस्ट लोगों ने करा वो भी मर गए, बाद में जो आए वो भी मर गए, अब जो कर रहे हैं वो भी मर जाएंगे, फ्यूचर में जो आएंगे वो भी मर जाएंगे, इलाज ढूंढते हुए कि अमर को कैसे प्राप्त हो। तो शिक्षा क्यों का मतलब है कि बार बार मृत्यु जो हमें हो रही है, बार बार जो हमें मरना पड़ता है, इस पर फुल स्टॉप लग जाए। ये है एजुकेशन का मतलब कि हम अमृत को प्राप्त करें। तमसोमा ज्योतिर्गमयो, अर्थात जो अंधकार में जी रहे हैं, जिन्हें मालूम नहीं सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ भी कर देते हैं कर्म उल्टे सीधे, जिसकी वजह से मृत्यु होने के बाद जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से चा, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है, अच्छा होनी ही होनी है, और मृत्यु होने के बाद जन्म भी होना है। तो जो अंधकार में कर्म करते हैं इग्नोरेंस में, तो वो हमारा नुकसान करते हैं, और उन कर्मों का फल भी है, चाहे अच्छे करो चाहे अच्छे अच्छे लोग समाज के हैं वो क्या बोलते हैं, जी मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, मैं ईमानदारी की खाता हूं, हम तो लोगों की मदद भी करते हैं, अच्छे गुण हैं, लेकिन ये अच्छे गुण अच्छी क्वालिटीज अच्छे कर्म भी तो हमें बांधते हैं। बंधन का मतलब क्या है, अगर आज आतंकवादी यहां आ जाए और सबके हाथ बांधे पीछे, ठीक है चलो आतंकवादी नहीं मान, उससे तो कोई भी नहीं बदमाश, मैं आऊं और मैं सबके हाथ बांध दूं पीछे से, किसी को बांधूं लोहे की चेन से, किसी को सोने की चेन से, और किसी को चांदी की चेन से, तो कौन सी चेन से बंधना पसंद करेंगे? पहले तो सोने वाले हाथ खड़ा करो, सोने की चेन से कौन बंधेगा, 50 तोले की चेन होगी, हाथ खड़ा जल्दी खोलूंगा नहीं कभी दोबारा, कहीं सोचो बोलो किसी और से खुलवा लेंगे, चांदी वाले हाथ खड़ा करो, सोने में चांदी में क्या रखा है, लोहा तो फिर भी ठीक है ना, चेन तो असली लोहे की होती है, लोहे वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा चलो बंधना तो है ही, किससे बंधेंगे, चलो तो भी नहीं बंधना चाहेंगे। तो अच्छे कर्म है सोने की चेन है ना, मिक्स कर्म है चांदी की चेन, और बुरे कर्म है लोहे की चेन, बंधे तो फिर भी हुए हैं। तो अच्छे कर्म करके भी व्यक्ति बंधता है, उसको फिर से शरीर मिलता है और अच्छा रंग रूप मिल जाता है, देवताओं के बीच में एंजॉय करके पिकनिक मनाकर फिर नीचे आना पड़ता है, और उसके बाद फिर यहां पर जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। अच्छा कर्म कर बेटा, अच्छा कर्म कर, यही उपदेश दे देके दूसरे को अच्छे कर्म में फंसा दिया। रूपा जी कहते हैं अच्छा कर्म बुरा कर्म सूखे मल और गीले मल के जैसा है, मल तो मल ही होता है ना, मल का मतलब समझते ना स्टूल के पास ना, गंदगी चाहे वो सूखी हो चाहे गीली हो, गंदगी तो गंदगी है। तो अच्छे कर्म सूखे मल के हिसाब से, तो अगर हम लोग अज्ञानता में तमसोमा ज्योतिर्गम अर्थात तो ज्योति की तरफ जाना चाहिए। ज्योति किसी माताजी की बात नहीं कर रहे, ज्योति मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब अंधकार से ज्ञान की तरफ जाना। अभी प्रकाश है ना यहां पर, तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, किसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, किसी कैसी बात करनी है, है ना। तो ये ज्ञान है, ज्ञान हमें ये बताता है किससे बात करनी, किससे नहीं करनी, कहां से जाना कहां से नहीं जाना, रास्ता बताता है। और अंधकार हो जाए तो किसी को भी थप्पड़ लग जाएगा, किसी को भी हाथ लग जाएगा, किसी को कोहनी लग सकती है, किसी से बात नहीं भी करने से टकरा सकते हैं, गिर सकते हैं, ये अंधकार है। तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उसके लिए बोला गया है उनको किस तरफ जाना, ज्ञान की तरफ जाना, तमसोमा ज्योतिर्गम, ये है शिक्षा का उद्देश्य। लोग पूछते शिक्षा क्यों, डिप्टी सीएम साहब पूछ रहे शिक्षा क्यों, तो शिक्षा इसलिए कि आप डिप्टी साहब आप भी आज शरीर में हैं, आज डिप्टी सीएम हैं, क्या गारंटी है अगली बार ये 5 साल के बाद दोबारा रहेंगे, क्या गारंटी है कि अगला जन्म फिर से मनुष्य का मिलेगा, क्या गारंटी है कि पशु बन के ना आना पड़े। नहीं नहीं हम इन सबको नहीं मानते, ये तो सांप्रदायिक हो जाएगा, ये तो धर्म हो जाएगा, धर्म तो हम स्कूलों से हटाना चाहते हैं। अच्छा धर्म हटाना चाहते हैं और धर्म हटा के सुखी रहना चाहते हैं, ये तो बड़ा अजीब बात है। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, रूपा जी कहते थे एनिमल सिविलाइजेशन, ये पूरा का पूरा सोसाइटी जानवरों से भरा है, बस दो पैर हैं और कपड़े पहने में, पूंछ गायब है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार काम करने वाला व्यक्ति पशु में भी होता है मनुष्य भी करता है। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, क्यों, क्योंकि धर्म हटा दिया गया है जीवन से, इसलिए पशु की भांति जी रहा है। कोई भी कर्म करता है उसका उद्देश्य ये चार काम कि अच्छे ढंग से आहार कैसे करूं, कहां कहां जाकर खाऊं, निद्रा मुझे कोई तंग ना करे, सोने दो जो कुंभकर्ण की तरह, मैथुन मैं विवाह ठीक है आजकल तो कोर्ट ने बोल दिया बेटा नहीं कर सकते कोई बात नहीं ऐसे रह लो, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा कुछ, जो लॉयर बने उन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा, जो लीडर्स बने उनको भी नहीं मालूम धर्म क्या है, तो अधर्म के साथ जी रहे हैं इसलिए ऐसे रूल सैंक्शन कर देते हैं। नो प्रॉब्लम, लिविंग सिस्टम शुरू कर दो, नहीं रहना शादी के साथ बगैर शादी के रह लो, पशु भी तो रहते हैं उनसे कुछ सीखो ना भाई, पशु फेरे लेते देखे हैं क्या, नहीं, ये संस्कार तो मनुष्य को दिए गए हैं ताकि वो धीरे धीरे संस्कारों को पूरा करता हुआ मनुष्य कहलाए और अपने कुछ कर्म ऐसे कर ले कि ज्ञान और धर्म की तरफ आकर्षित हो जाए इन संस्कारों की वजह से। लेकिन लोगों को लगता है रिचुअल्स हैं, माइथोलॉजी है, इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने ये किया तो उसका क्या फायदा हुआ, अरे भैया एक मिनट में फायदा चाहिए, इसके रिजल्ट एकदम नहीं आते, अगर आप सिनलेस है तो रिजल्ट जल्दी आएंगे, अगर सिंफुल है तो लेट आएंगे, क्योंकि पहले पुरानी खत्म हुआ, पुराना नहीं खत्म होता नया कैसे मिलेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार आहार निद्रा भय मिथुन कर रहा है व्यक्ति, तो ये पशु है, शास्त्र कह रहे हैं क्या कहते हैं, दुई पाद पशु, टू लेगेड सोफिस्टिकेटेड डीलक्स एडिशन ऑफ एनिमल ह्यूमन बींग्स। अगर धर्म नहीं, अगर धर्म है, और धर्म क्या है, अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करनी है लेकिन किस चीज की, ब्रह्म की जिज्ञासा, मैं कौन हूं भगवान कौन है, और फिर तमसोमा ज्योतिर्गमयो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, इन ग्रंथों का अध्ययन कर सही क्या है गलत क्या है वो करना है, नहीं ना सही करना है ना गलत करना है, सही जानकर धर्म क्या है वो करना है, तब क्या होगा, मृत्यु मां अमृत गम्यो, मृत्यु से हम लोग किसको प्राप्त करेंगे, अमृत को प्राप्त करेंगे, नो मोर बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ, फिर नहीं होगा ये सब, समझने के बाद भी सुनने के बाद भी फिर अचानक एक कष्ट याद आता है, हे भगवान ये कष्ट निकाल दो बाकी सब ठीक है, फिर से हम लोग देहात बुद्धि देहात चेतना में आ जाते हैं और अपने छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर भगवान को तंग करते हैं, भगवान कहते हैं अरे बाबा फिर आ गया ये मांगे राम, फिर आ गया तू, कब तक मांगता रहेगा, जीवन भर हाथ फैलाता रहेगा, अरे इस हाथ फैलाने को मैं चाहता हूं तो परमानेंटली रोक दे, और ये रुकेगा कैसे, जब तक हम लोग इन ग्रंथों की शरण में नहीं जाएंगे। तो उस सभा में उन्होंने बोला कि मैं ये पूछना चाहता हूं, आज तक मुझे ये आंसर नहीं मिला कि शिक्षा क्यों। और दूसरी बात, क्योंकि इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में इन ग्रंथों को नकार दिया गया असुरों के द्वारा, तो सारे के सारे लोग जिन्होंने ये नहीं पढ़ा वो असुर हैं, जो धर्म से नहीं जुड़े वो क्या है, असुर है, पशु हैं। फिर लोगों को लगता है प्रभु जी अगर पढ़ेंगे नहीं, ये डिग्रीज हमारे पास नहीं होंगी, एजुकेशन हमारे पास नहीं होगी, मटेरियल एजुकेशन और इनोवेशन हम लोग ये लेबोरेटरीज नहीं बनाएंगे तो डेवलपमेंट कैसे करेंगे, हम लोग पिछड़े कहलाएंगे, है कि नहीं, कहलाएंगे कि नहीं। अरे इस डेवलपमेंट की जरूरत क्या थी मुझे पहले तो ये बताओ, क्यों चाहिए थी डेवलपमेंट। अच्छा भला व्यक्ति 90 से 100 साल जीता था गांव में, कितना साल जीता था, 90 से 100 साल खेतों में जा रहा है, एक्यूप्रेशर हो रहा है, फल खा रहा, ताजे फल सुना, ताजे देखा है, देखा तो नहीं होगा, सुना है आपने ताजे फल, ताजे फल वो खाए लोगों ने, पुराना घी खाया है, गाय का, जर्सी गाय का नहीं, गाय का देसी घी खाया लोगों ने, वो खाया करते थे। सुबह जो है सुंदर हवा में 4 बजे पक्षी जो है चींची करके चूचू करके और मुर्गे जो है क्या करते हैं कुकड़ू कु करके उनको उठा देते थे, अलार्म की जरूरत नहीं है, 4 बजे से लोग अपना जीवन शुरू करते हैं। क्या जीवन का सतोगुण का जीवन गांवों का। अचानक कुछ असुरों ने सोचा चलो टीवी बना दें, कहते भाई टीवी क्यों, कहते सर टीवी में हम लोग ये दिखाएंगे कि ऑपुलेंट लाइफ किसे कहते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, कब तक हम सुखी नहीं रहेंगे, कब तक हम लोग दुखी रहेंगे, ये सब बताएंगे टीवी के द्वारा। लोगों के अंदर डिमांड क्रिएट होगी जब वो एडवर्टीजमेंट देखेंगे, उसमें सुंदर सी लड़की दिखा देंगे सीमेंट की बोरी के साथ भी, कम कपड़ों में लड़की दिखा दो, लड़की का कोई मतलब सीमेंट की बोरी से कोई मतलब नहीं है बिना नहीं सीमेंट का, लेकिन एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे लड़के का शेविंग क्रीम है, लड़के का वो क्या बोलते हो रेजर है उसमें भी लड़की, बिस्किट में भी लड़की, इंश्योरेंस में भी लड़की, हर एड में लड़की। क्यों दिखाते हैं, ताकि उसको भोग की दृष्टि से लोग, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर भोग मेंटालिटी है, उसको देखेंगे उसके और वस्त्र कम कर देंगे, उसके बाद उसके अंदर डिजायर डेवलप होगा, रोज इच्छाएं देखेगा, कहेगा ओह ये फोन जब तक i7 मेरे पास नहीं होगा तब तक मेरा जीवन क्या है, अधूरा है। जब तक मैं बिनानी सीमेंट से मकान नहीं बनाऊंगा तब तक मेरा जीवन अधूरा है, जब तक मैं ये पर्टिकुलर शेविंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो उस क्रीम में दिखाया था कि 8, 10, 15 माताएं साथ में आ जाती हैं, तो मैं भी क्रीम लगाऊंगा, वो क्रीम लगा के जाकर भिखारी साथ में आते हैं, जब आपका पैसे दे दे रहे। और रेड लाइट पे खड़ा हो तो ताली बजाने वाले लोग आते हैं, ठां ठां मारते हैं, कहते पैसा दे चिकने पैसा दे, ऐसे किसी बोलते हैं। वो कहता है एड में तो कुछ और दिखाया था, यहां पर कोई और लोग दिख रहे हैं। तो इतनी समस्याएं, एडवर्टीजमेंट दिखाया, अच्छा भला व्यक्ति अपने खेतों में काम करके लस्सी का गिलास पीकर 4 पराठे खाकर खाट में बढ़िया सो रहा है, जबरदस्त खर्राटे मारता हूं। अचानक एक दोस्त आ गया दिल्ली से, कहता है यार हमने पढ़ाई तो गांव में इकट्ठी की थी, तू यहां क्या कर रहा है यार, मेरे साथ चल शहर में। कहता हूं शहर में क्या है, कहता शहर में अब देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, क्या बड़े बड़े कंपनीज हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बना रही हैं। कहता तो, कहता उसमें कहीं जॉब करनी हो, कहता फिर, कहता बढ़िया पैकेज प्रभु जी 1.5-2 लाख मंथली पैकेज, और कौन व्यक्ति अपनी बेटी नहीं देगा फिर तुम्हें, एक आजकल दो चीज तो देखते हैं, एक पैकेज देखते हैं और एक पैकेजिंग देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, पैकेज और पैकेजिंग, कैसे ढका हुआ है, मतलब क्या इसका अपीयरेंस है, और दूसरा कितने का पैकेज है, बैंक बैलेंस कितना है, दो चीज, इसके अलावा कुछ नहीं देखा जाता, कौन सा घर, कौन सा खानदान, कौन सा वर्ण, कौन सा आश्रम, कितने पाप किए, कितने अफेयर चल रहे हैं, क्या पीता है, कौन सी पीता है, कितनी पीता है, कहां जाता है, क्या खाता है, क्या खेलता है, ये भगवान, ये सब शराबी वो शराबी हो, कबाबी हो, जुआरी हो, ऐसा कैंडिडेट चाहिए आजकल। तो करेक्टर नहीं देखा जाता, क्या देखा जाता है? अपीयरेंस और पैकेज। और जब पैकेज देखे जाते हैं, अपीयरेंस देखा जाता है, और उसके बाद विवाह हो जाता है मान लीजिए, तो फिर क्या होता है? सात जन्मों के लिए नहीं होता वो, उसकी तो कसमें वैसे खाते हैं, आज कोर्ट में साइन करके हो जाता सब कुछ। तो सात जन्मों के लिए कसमें खाई थी, झूठ थी वो सब ना। वो क्या करता, लड़की आई हस्बैंड के साथ, क्या मांगा तुमने? कहते तुम बताओ, कहते तुम बताओ। लड़की कहती मैंने मांगा सात जन्म इकट्ठे रहे। कहते तुमने क्या मांगा? कहते मैंने मांगा मेरा ये जन्म जो सातवां ही हो। नहीं भाई, सात कौन, सात सात जन्म मुश्किल है आजकल। तो दो दो मिनट की वीडियो वाला जीवन है, कौन देखे तीन तीन घंटे की मूवी? दूसरे लोग सात जन्म, नहीं नहीं जी नहीं। हमारे देश में एनिवर्सरी होती है, कई एनिवर्सरी मैंने अटेंड करी, 50 साल की, 75 साल पूरे हो गए लोगों को, 65 साल पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। अमेरिका में भी होते हैं, वहां डिबूटीज बताते हैं, कहते हैं प्रभु जी हमारे यहाँ 65 वीक की एनिवर्सरी होती है, 65 वीक्स, 40 वीक्स, उसके बाद तो खत्म हो जाता सब कुछ। और कई बार दोबारा बुलाते हैं तो हस्बैंड चेंज होता है, या कई बार वाइफ चेंज होती है, ऐसा भी होता है। कल्चर नहीं है। तो उसने कहा चलो शहर में चलो, अच्छा पैकेज है। कहते फिर, कहते फिर बड़ा अपना मकान लेना, अपार्टमेंट सुंदर सा, कहते फिर, कहते सुंदर सा विवाह करना, कहते फिर, कहते बच्चे करना, कहते फिर, कहते उनको अच्छे स्कूल में, जीडी गोयनका में या भटनागर में डालना, कहते अच्छा फिर, कहते उनको पढ़ाना पालना पोसना, उनको बड़ा करना, कहते फिर, कहते उनकी शादियां कराना, कहते फिर, कहते पोतों की शक्ल देखना, कहते फिर, कहते फिर आराम से रेस्ट करना, रिटायर्ड लाइफ। कहते बदतमीज इंसान, अभी भी तो मैं वही कर रहा था, तूने मुझे उठा दिया। जो जीवन तो मुझे 40 साल 45 साल के बाद का दिखा रहा है, मैं अभी से एंजॉय कर रहा हूं उस लाइफ को, शत्रुघ्न की। तो गांवों में लोगों ने शत्रुघ्न का जीवन जिया है, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं मरना जल्दी चाहिए, खांसते खांसते बड़ी खतरनाक बीमारी, हॉस्पिटल बने हैं, इन हॉस्पिटल में एडमिट कौन होगा? फिर खाली पड़े रह जाएंगे। जीवो दया, डॉक्टर पर दया करेंगे। तो ऐसी बीमारियां भी तो लगनी चाहिए, चलो शहर में आ जाओ। गांव की सुंदर सुबह सुबह की हवा हाँ बेकार है, शहर में आ जाओ, पोल्यूशन इनहेल करो, यहां तक कार्बन जमा हो जाएगा, यहां तक पूरे लंग्स में कार्बन जमा है। सिगरेट पियो, नहीं पी रहे, दूसरा पी रहे तो भी अंदर जा रहा है, नो प्रॉब्लम। उल्टा सीधा खाएंगे, सब कुछ करेंगे, और इन सारे एडवर्टीजमेंट्स को देखकर नाना प्रकार के भोगों में लिप्त हो जाएंगे, और उसके बाद जो सो का जीवन था वो साथ भर ले आएंगे। बोलो हरे कृष्णा, खत्म। तो ये था, और क्या कर दिया इनोवेट के, टेलीविजन चैनल, टीवी आ गया, एंड्रॉइड आ गए, फोन आ गए, और बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स, टीवी, और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। थोड़ा सा हंसने मुस्कराने का बस इतना पैसा ले लेते कि ये इस्तेमाल करो, ये इस्तेमाल करो। और हमारे अंदर जो है ध्याय तो विषयान पुंसा संघास शिव पर जाए थे, अर्थात जैसे ध्यान करके उन चीजों को देखते हैं इच्छा डेवलप हो जाती है, और उसके बाद लेने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको अपनी पोजिशन में लेने के लिए, उसको भोगने के लिए जीवन भर संघर्ष करके फिर कुछ ले पाते। तो यहां से अच्छा करो चाहे गना करो चाहे बुरा करो, क्या कहा गया? ये दोनों हमारे लिए नुकसान है। क्यों? क्यों क्या प्राप्त होगा? फिर से जीवन, फिर से देह मिल जाएगा। इसलिए क्या प्राप्त करना है? अमृत प्राप्त करना है। आप किस संस्था में बैठे हो? कृष्ण भावना अमृत। असुर लोग तो जिस अमृत के चक्कर में लगे थे, उस अमृत को मतलब इसलिए अमृत बोलते क्योंकि लंबे समय तक जीते हैं, फाइनली उसको भी खत्म होना पड़ता है। लेकिन जिस अमृत को हम बांट रहे हैं, ये जो कृष्ण भावना अमृत का आंदोलन जो बढ़ रहा है, ये ऐसा अमृत है कि इससे हम लोग तो अमृत पान करेंगे ही, हम तो अमृत को प्राप्त करेंगे ही, और जिसको छू दिया, जिसको बता दिया, उसको भी अमृत मिल जाएगा। अलग से मंथन करने की जरूरत नहीं है। मंथन करना है तो ये चैंटिंग बैग का करना है, इसके अंदर बीज हैं, इसको चैंटिंग करनी है, और फिर ये हृदय में मंथन शुरू होगा। खतरनाक बीमारियां निकलेंगी, खतरनाक थॉट्स विचार आएंगे, सबको निकालो, सब गंदगी को हर निकालो, पाप याद आएंगे, पुण्य याद आएंगे, शक्लें वो याद आएंगी जिसको आपको पसंद नहीं है, सब कुछ आएगा उस समय याद। ये मंथन हो रहा है, और इन मंथन को कर 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 सारी गंदगी बाहर निकालकर
जिस दिन हमारा पूरा का पूरा ध्यान भगवान के नामों पर लग जाएगा, कृष्ण के फॉर्म में लग जाएगा, हरे कृष्णा हरे 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 राम, अमृत प्राप्त हो जाएगा। ये अमृत लेने के बाद फिर कोई जन्म नहीं, और जन्म अगर हो भी गया तो फिकर नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, इसको अपनाने वाला व्यक्ति इस जन्म में भी सुखी रहता है, परलोक तो उसका सिद्ध हो ही गया। व्यक्ति के लिए, अगर भक्त के लिए कोई समस्या नहीं है संसार में, जो अभक्त है सारी समस्याएं उसके लिए है। तो शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, अमृत के बारे में बात कर रहे थे। तो लीडर्स को मालूम नहीं है, कंफ्यूज हैं, ऐसे लोगों को हम चुनते हैं, वोट देते हैं जिनको अक्कल नहीं है, और अगर है भी तो भैंस बराबर। ऐसे लोग जिन्हें कुछ नहीं मालूम, शिक्षा के अधिकारी बन जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं। क्यों नेता, क्यों टिकट दिया? क्योंकि बेटा दरी बिछाता था, मुझे चाय पिलाता था, इसने मेरे पैर भी दबाए हैं, गलत टाइम पर हाथ दिया, साथ दिया है, इसलिए बेटा टिकट तेरे को, जा संसार में सारे बेवकूफ भरे पड़े हैं, तुझे जिता देंगे, जा। भरे कि नहीं भरे? बेवकूफी तो भरे हैं। क्या एजुकेशन, क्या डिस्क्रिमिनेशन की बुद्धि है, किसको देना है किसको नहीं देना, कुछ नहीं पता। क्या देखते हैं? सर ये बहुत अच्छा है, सर इसका ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, बस इसलिए वोट देते हैं, ये इस पार्टी का है इसलिए वोट देते हैं। बोलना नहीं आता, नेता मुंह खोले तो पता चलता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। अरे जो शास्त्र की बात करे, जो धर्म की बात करे, जो धर्म को जिए वो है नेता। जैसे हमारे इस समय देश के प्रधानमंत्री, वो थोड़े धार्मिक है, उनके चक्कर में सबको धार्मिक बनना पड़ रहा है आजकल, जो और भी असुर उनके पास, उन सबको धार्मिक बनना पड़ रहा है। क्यों? वो व्रत रखते हैं एकादशी का, नवरात्रों का, और क्या करते हैं, गीता बांटते हैं। उनको गीता पढ़ी है इसलिए उनको मालूम है, इससे बड़ा ज्ञान नहीं है, इससे बड़ी मूल्यवान चीज नहीं संसार में। तो बोलते हैं, एक राजा बोलता है कि मेरे पास आप दूसरे राजा को, इससे बड़ा कुछ देने के लिए नहीं है मेरे पास। अरे राजा हो, कोई उनका हीरा दे सकते हो, एक पेट्रोल पंप दे सकते हो, कुछ ना कुछ तो दे सकते हो। कहते नहीं नहीं, इससे मूल्यवान चीज नहीं मेरे पास, और तुम्हारे पास तुम्हें लगे, क्योंकि भाई लग सकता है कि चलो मेरे पास नहीं है, अब ओबामा के पास होगी, है ना, पुतिन के पास होगी, फिर मेरे से महंगी चीज उसके पास होगी। कहते नहीं नहीं, मेरे पास तो है नहीं, और तुम्हारे पास भी इससे अच्छी लेने की चीज नहीं है। मतलब तुम्हारे पास आज तक जो इकट्ठा हुआ, जो मिलेगा, उसमें से भी जो सबसे बहुमूल्य चीज है वो कौन सी है? ये भगवत गीता। ये व्यक्ति ऐसी बात, ऐसी स्टेटमेंट वही बोल सकता है जिसने गीता पढ़ी है, जिसने गीता को जिया है, और जो गीता को वैल्यू करता है, जिसको मालूम है गीता की इंपॉर्टेंस क्या है। इतना बोलने के बाद कुछ लोगों ने पढ़ ली होगी, अच्छा है। तो इसलिए जब तक लोगों को यह पता नहीं कि धर्म, तब तक वो जो सोकल्ड अमृत के चक्कर में लगे हुए ना, इस संसार में लोग किस अमृत के चक्कर में लगते हैं? वायग्रा खाएंगे और कुछ इंजेक्शन लगवा लेंगे कि भाई 60-70 किसी तरह निपट जाए, और अंतिम समय तक मैं भोग करता रहूं, ब्रेड समोसा पकोड़े खाता रहूं, पिज्जा चाउमीन खाता रहूं, और कुछ ना कुछ भोग करता रहूं। डॉक्टर साहब 40 तक तो सब ठीक चल रहा था, अभी पता नहीं यहां से आवाज आती है, इधर से भी आवाज आती है, कहते आवाज तो मुंह से ही आती है, यहां तो कुछ और होता है, यहां ग्रीस खत्म हो गई है, L5 L6 में कुछ प्रॉब्लम आ गई। नहीं नहीं, मतलब समझ रहे यार, पहले मैं ये उठा लेता था, ये भी उठा लेता था, अब नहीं उठता, यहां दर्द होता है, ये मना करता है। और क्या है कि पहले मैं वॉक करता था, सांस नहीं चढ़ता था, अभी इतना से चढ़ता हूं तो लगता है जैसे 2 किलोमीटर भाग कर आया हूं। डॉक्टर साहब मेरा घर ऊपर है, इसमें मैं जीवन भर चढ़ा हूं, उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। अभी मां बोलती बेटा ये ले आ, तो मैं सोचता हूं उतरूं कि नहीं उतरूं, ऊपर से थैला टांग देता हूं नीचे, बेटा ये ले। ये थैला वाली प्रथा जो है ना, ये एक दिन सबको हॉस्पिटल पहुंचाएगी, जो ये 2nd, 3rd, 4th floor में रहते हैं। दिल्ली में तो 4 दिन है, बाहर बॉम्बे में तो और भी लंबा है। कारण क्या है? आरामदेह जीवन चाहिए। बेटा तू ये टांग दबा, तू ये टांग दबा, मेट तू इधर आ, तू सर दबा, बड़ा अच्छा लग रहा है, खा खा के फूलते जा रहे हैं बैलून की तरह, और सारी बीमारियां स्टोर करते जा रहे हैं। अचानक आवाज आएगी, डॉक्टर साहब मैक्स हॉस्पिटल, एकदम खत्म। तो ये जो थैला पकड़ाने वाली पॉलिसी है, बिल्कुल गलत है। नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाओ, कभी डॉक्टर पास नहीं आएगा, नहीं तो वही थैला लटका के दवाइयां भी खींचोगे एक दिन। दवाइयां सर, ग्लूकोज की बोतल भी दे दो, वो नहीं, यही थैला जो इंद्रित्व के लिए खींच रहे हैं, आरामदेह जीवन के लिए दवाइयां खींचनी पड़ेंगी। इससे मेड हेल्दी है, मेड फिट है, मेड फाइन है, मेड बिल्कुल तंदुरुस्त है, मालकिन जो है परेशान है। क्यों? सारे काम वो कर रही है, वो हेल्दी है, वो कुछ भी खाए उसको डाइजेस्ट है। आप थोड़ा सा घी भी नहीं खाते, डॉक्टर ने मना किया, वो आपके घर का घी खत्म करती जा रही। आपके दूध में मलाई जमती है, आप खाली देखते हो मलाई, वो सारी की सारी मलाई वो खा जाती है, उसके बाद उसकी हेल्थ अच्छी है। एक बार एक मेड बीमार हो गई गलती से, उसका बुखार था 102, मालकिन को भी बुखार चढ़ा हुआ था, उसका था 101। कहती तेरा मेरे से ज्यादा कैसे, तुम कर, मतलब मैं मालकिन हूं, मेरा ज्यादा होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि शरीर हिलाओ, शरीर चलाओ, आगे पीछे भागो, अगर ये नहीं कर सकते हैं। मेरे को फोटो, मैंने पता ना एक फोटो आया मेरे पास, उस फोटो में वो क्या था, ग्राइंडर था, घरों में जो होता था पुराना ग्राइंडर, वो था, चक्की थी और झाड़ू, मतलब पांच सात चीजें थी, और उसमें लिखा हुआ था हमारे देश की महिलाओं का पुराना जिम। ये पुराना जिम था, हाथ चलाते थे, एक घुसा किसी को मारे तो गिरा सकती थी महिलाएं, मतलब काम किया था हाथों से, शक्तिशाली थे, बच्चे ऐसे होश पुष्ट निकलते थे, लोग बोलते तूने माँ का दूध पिया, कहते हाँ पिया, आज सामने। और आज बोतल का दूध पी के, पाउडर पी पी के लोग बड़े हुए, कोई ललकार दे तो उसकी ललकार से भाग जाता, गिर जाता। पहले ललकार आ जाता था, अब 100 नंबर पर फोन किया जाता है, पुलिस जब तक नहीं आती तब तक पिटता रहता, पिटाम पिटाम, यह हालत है। बचपन में दूध की बोतल, बड़े में शराब की बोतल, आखिरी में ग्लूकोज की बोतल, यह हालत है लोगों की। तो कहने का क्या मतलब है, ये सब समस्याएं हमको दुख देगी केवल। इस तरह की मानसिकता, कोई गर्व करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये डिग्री है। ये जो डिग्रीज हैं, ये हमारी बेवकूफी की डिग्रीज है कि इतने साल, 25 साल, 10 साल हमने वेस्ट कर दिए अपने जीवन की, ये जो डिग्री दी है मैंने। डिग्री होनी चाहिए भक्ति शास्त्री की, भक्ति वैभव की, आईटीसी कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। ये कोर्सेस काम आएंगे ऊपर, जब यमराज कोई आए, पहले तो आएंगे नहीं, अगर कहीं दिखाने भी पड़े तो ये दिखाओगे, कहते छोड़ दो भाई, ये तो वहां का प्रोडक्ट है, कहां का, गोलोक धाम का, हाथ भी नहीं लगाएंगे। नहीं नहीं प्रभु जी, अगर हमने ये मॉडर्न एजुकेशन नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे बुद्धि, आप देखिए प्रभुपाद जी की टीचिंग्स को पढ़कर आज विदेशों में लोगों को समझ आ गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य यहां बने रहना नहीं है, यहां से निकलना है जीवन का लक्ष्य। तो उन्होंने क्या किया, माता पिता ने अपना घर बार बेचा, समझ आ गया जिनको, मायापुर में जो है मकान ले लिया, बैंक में रखा पैसा, मंथली इनकम शुरू हो गई, और बच्चों को डाला गुरुकुल में। कौन से गुरुकुल में? वैदिक गुरुकुल में, जिसमें मटीरियल नॉलेज नहीं होती, पढ़ाते तो थोड़ा सा केवल हिसाब गुना भाग करने के लिए, पैसे गिन सके, दे सके, कर सके, दैट्स ऑल। मटीरियल एजुकेशन ही नहीं है, मटीरियली डेड, उसके पास डिग्री नहीं है, उसको जॉब नहीं मिलेगी कभी, ताली बजाइए, जॉब नहीं मिलेगी उसको, जॉब नहीं मिलेगी। आपके पास कोई नौकरी आया कंपनी में, कह सर मैं जॉब करना चाहता हूं, तो कोई क्या पढ़ाई? कुछ नहीं पढ़ा, भक्ति शास्त्री पढ़ो, क्या कह रहे हैं, भक्ति वैभव पढ़ो, इसका क्या करूं भाई, आईडीसी कोर्स भी किया सर मैंने, और वैष्णव एटीके तो जाते कर लिया था, और उससे पहले 7 डे सेशन किया था। वो कहेगा भाई तो मुझे प्रवचन में पंडित थोड़ी मांगा है, तो मटेरियल एजुकेशन नहीं है, तो जॉब भी नहीं है उसके लिए, तो मटेरियली डेड, वो काम कर ही नहीं सकता इस संसार में। करेगा तो क्या करेगा, मंदिर में झाड़ू लगाएगा, मंदिर में पानी पिलाएगा, मंदिर की बुक स्टॉल संभालेगा, मंदिर प्रवचन करेगा, मंदिर में लेक्चर देगा, डीटी वर्शिप करेगा, तो क्या करेगा, इससे किस काम के हैं, ये यहां से मुक्ति का कारण बनेगा उसका। तो जिनको समझ आ गया उन्होंने अपने बच्चों को वहां डाला, और जिनको अभी समझ नहीं आया है वो कह रहे हैं देखो ऐसा है भाई, समाज है ना, तो सब लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, है ना, थोड़ा ये भी थोड़ा ये भी, बराबर होना, बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, बुरा नहीं कर लो, उनसे अच्छे जो कुछ नहीं कर रहे। तो जो बैलेंस वाले लोग हैं, बेटा तू खा कमा, मैं तो फंस गया हूं, ना मैंने इतना कमाया, इतनी प्रॉपर्टीज बनाई, गलती से एक दिन रिस्कॉन आ गया, रिस्कॉन आके मैंने 7 डे सेशन सुन लिया, उससे पता चल गया कि यार बड़ा नुकसान है अगर उल्टे सीधे काम करते तो ऐसा है, हमको मंदिर जानते हैं, हमारी तो बात पूरी हो गई है, हमारी तो अमल पूरी हो गई है, ये सब पैसा वैसा तेरे लिए, तू इंजॉय कर, इंजॉय। कई बार हम अपने बच्चों को इसलिए भी लाना नहीं चाहते कि ठीक है जो मैंने कमाया मैं तो फंस गया, ये कमाएगा ये खाएगा इंजॉय करेगा, मतलब अच्छा तुम करो तो पाप लगे और वो करे तो पुण्य बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो खुद तो भक्ति करते हैं, अपने डिपेंडेंट्स को भी कराते हैं, क्योंकि अपने डिपेंडेंट्स को जन्म मृत्यु से बाहर भेजना ही लक्ष्य है जीवन का। मृत्यु मां अमृत को है, वही अमृत जो है आज निकल आया कहां से, समृद्ध अमृत मंथन, सॉरी समुद्र मंथन से। मंथन होने के बाद जब अमृत सामने आया तो असुरों की बुद्धि फिर गई, छीने झपटे किए, हाँ इसी का तो हमने प्रयास करा था, इसी को तो हम चाहते थे, लेकिन तुरंत भगवान ने क्या किया, सुंदर सा एक मोहिनी रूप बनाया, और कितना आकर्षक था वो नहीं बताएंगे, बहुत आकर्षक था। और असुरों को बोला कि देखिए आप तो बड़े महान है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा सर आप कहां से आई हो, क्यों आई हो, मतलब इतनी सुंदर हो आप, है ना, हमारे लिए आए हो क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कहते आप ही कुछ हमारा वो करो, हमारे बीच में प्रॉब्लम हो गई, अमृत आगे तो देवता और सब लड़ रहे हैं, कहते तुम्हें लगता है कि मैं जो डिसीजन दूंगी सही दूंगी? कहते सरेंडर जी, 100% सरेंडर, आप जो बोलोगे वो मान लूंगे। कहते ठीक है आप एक काम करो, पहले इन गरीबों को, इन देवताओं को जो है थोड़ा अमृत दिला दो, उसके बाद तुम्हारी बारी है। कहते ठीक है नो प्रॉब्लम, बस उसको निहारते रहे, उसको देखते रहे, हमारी बारी भी आने वाली है, जय हो, बैठे रहे। और फिर जो है मोहिनी अवतार ने जो है सारे देवताओं को बुलाना शुरू किया। ये जो राहु था इसको पता चल गया, कहते कुछ गड़बड़ हो गई है सिस्टम में, इसने जल्दी से ना अपने कपड़े बदले, मेकअप मुकअप कराया था, और ये असुरों के बीच में जाके बैठ गया, सूरज देवताओं के बीच में। अब मोहिनी ने जब पिलाया अपना अमृत सबको, तो इधर जो है चंद्र और सूर्य जो था ना, ये पहले इनसे बड़े परेशान रहते थे, तो इन्होंने पहचान ली, करी ये तो वही है, इसने पाला कैसे बदल लिया। इतने में जो है कुछ अमृत जो है मुंह में जा चुका था, और जोर से चिल्ला पड़े कि ये जो है कौन है, राहु है, ये असुर है, ये हमारे बीच में आकर क्या पी रहा है, अमृत पी रहा है। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार ने क्या किया, अपना चक्र निकाला और चक्र आया और चक्र से उसकी गर्दन कट गई, और गर्दन कटी तो नीचे का जो धड़ था और ऊपर का जो मुख था, क्योंकि गर्दन तक आ चुका था वो अमृत, तो ऊपर का वो हो गया क्या अमृत, उसको अमृत प्राप्त हो गया। और बताते हैं यही राहु बना और ये केतु बना हिस्सा, और वो आज तक उस चंद्र और सूर्य से बदला ले रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं भाई, और उनके पीछे पड़े हुए हैं, और जब भी समय मिलता है, जब भी उनके नजदीक आते हैं, उसको क्या करते हैं, ग्रस्त कर लेते हैं, पूरा का पूरा मुंह में डाल लेते हैं। तो हमें दिखाई देता है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, लेकिन वास्तव में ये इस कारण होता है। साइंटिस्ट लोग इसके कोई और भी संज्ञा दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली शास्त्र में लिखा वही प्रमाण है। पुराना समय नहीं रहा कि यहां से तीर छोड़ेंगे तारे निकलेंगे कुछ ऐसा चमत्कार वगैरह, नहीं, कलयुग के लोग हैं सीइंग इज बिलीविंग, उनको लगता है कि देखेंगे तो विश्वास करेंगे, ऐसे चमत्कारों में विश्वास नहीं करते। तो ये सारी चीजें जो है उसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, हाउ इज हैपनिंग, व्हाई इज हैपनिंग, दे हैव नो आंसर्स, तो इन कथाओं को नहीं मानते। तो इस प्रकार जो राहु और केतु हैं वो आज भी चंद्र और सूर्य को ग्रहण कर वो कर रहे हैं, ग्रस्त कर रहे हैं, ग्रास कर रहे हैं, और इनके कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी है, कुछ अच्छी चीज भी देते हैं पॉलिटिशियंस को, एडमिनिस्ट्रेटर को, इस प्रकार के इनके अंदर काफी चीज जो है क्वालिटीज भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर नुकसान ही करते हैं अगर दूसरे दूसरे दशाओं में बैठ जाए, किसी के दूसरे ग्रहों में अगर बैठ जाए तो व्यक्ति का जो है पूरा का पूरा नुकसान भी कर देते हैं। तो राहु और केतु है इसलिए हम देखते हैं इसको पूजने के लिए कोकिला वन भी जाते हैं ना लोग, वहां पर भी जो है, वहां तो शनि है सर, तो ये सब जो है हमारे को नक्षत्रों के हिसाब से हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को हमें जो है हमारे वो दिलाने में मदद करते हैं, इसलिए इन सब से बचना है तो भी क्या करना पड़ेगा, अमृत को प्राप्त करना। और लोकल अमृत की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, उस अमृत की बात कर रहे हैं जिसका नाम है कृष्ण भावना अमृत, और वो कैसे प्राप्त होगा कलयुग में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।